बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 6 जनवरी दिन शनिवार। मैं हूं संदीप सोनी। तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन जेल भेजने के प्रावधान और 3 साल की सजा पर विपक्ष सहमत नहीं। तीन तलाक को अपराध घोषित करने से क्या मुस्लिम समाज में सुधार होगा या ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी है? बीबीसी इंडिया बोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शादान फरासत चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। झारखंड के रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में 3.5 साल की सजा सुनाई है। ये सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई है। सजा के अलावा लालू यादव पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अशोक कुमार ने सजा का ऐलान करते हुए कहा, सजा की घोषणा के बाद लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने कहा,
पूरा भरोसा हम पे, कोर्ट पे भी भरोसा है, माननीय न्यायाधीश पर भी हम पूरा भरोसा करते हैं और बेल उनको मिलना ही है। जो करेगा, जो सत्य और न्याय के लिए जो जूझने का काम करेगा उसको इसी तरीके से समाजवादी ताकत घेरने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं, आप पूरा मजबूती के साथ हैं।
लालू यादव पर फैसला आने के बाद भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के गले मिलने वाली एक तस्वीर पोस्ट की और तंज कसा, राहुल के सहयोगी को मिली जेल। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर इलाके में आज एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। हादसे में कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले की निंदा की है और पुलिसकर्मियों की मौत पर दुख जताया है। संयुक्त राष्ट्र के लिए ईरान के दूत गुलाम अली खुसरो ने अमरीका पर आरोप लगाया है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी सदस्यता का गलत इस्तेमाल करते हुए ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के संबंध में उसने आपात बैठक बुलाई है। बीते साल दिसंबर में शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1700 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुलाम अली खुसरो ने कहा,
There is a long history of U.S. bullying at the UN, but this is a
संयुक्त राष्ट्र में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का अमेरिका का लंबा इतिहास है, लेकिन ये उदाहरण अभूतपूर्व है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं और सरकार ने प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए प्रदर्शनों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने का प्रयास किया है। प्रदर्शनों में हिंसा भी हुई और अमरीकी राष्ट्रपति समेत कई विदेशी ताकतों ने इसे भड़काने की कोशिश की है, लेकिन मैं बता दूं कि ये ईरान का आंतरिक मामला है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्था की बहस का मुद्दा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के लिए ईरान के दूत गुलाम अली खुसरो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दोनों देशों के बीच आपसी मतभेद सुलझाने और संबंध बेहतर बनाने की बात करने के लिए जर्मनी और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। तुर्की यूरोप के साथ अपने संबंध बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहा है। मुलाकात के बाद साझा प्रेस वार्ता में तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चौवशुग्लू ने की मौजूदगी में जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमार गैब्रियल ने कहा कि इस बात पर सहमति बन गई है कि साल 2016 में तुर्की में हुए नाकाम तख्तापलट की कोशिश के बाद सामने आई समस्याओं को सुलझाने के लिए दोनों देश साथ में काम करेंगे। मिस्र में पुलिस हिरासत में अफरोतो नाम के एक युवक की मौत के बाद काहिरा में एक पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष की खबरें हैं। मिल रही रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों पर युवक को यातना देने का आरोप लगाया और पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके और पुलिस स्टेशन के भीतर घुसने की भी कोशिश की। जुटी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को कथित तौर पर नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में अफरोतो को गिरफ्तार किया गया था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है संदीप सोनी। टोल फ्री नंबर नोट कीजिए जल्दी से, 1811-7000 और 1811-7001। कार्यक्रम में श्रोताओं को जल्द करेंगे शामिल, उससे पहले आपको आज का विषय बताते हैं। 3 तलाक को अपराध घोषित करने से क्या मुस्लिम समाज में सुधार होगा या ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरेबाजी है? बीबीसी इंडिया बोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर। इससे पहले कि श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करें, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शादान फरासत चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। वक्त बर्बाद किए बिना चर्चा शुरू करेंगे। शादान फरासत, कानून के जानकार होने के नाते इस विधेयक पर आपकी क्या राय है?
शुक्रिया संदीप जी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त की अपनी जजमेंट में पहले ही 3 तलाक को रद्द कर दिया था। मतलब अगर अब आज कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 तलाक दे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जब ये एक बार पहले ही रद्द कर दिया जा चुका है तो आज इसको अपराध बनाने से कोई फ़ायदा ना मुस्लिम औरत को होगा ना मर्द को होगा। इसकी 2 वजह है। अगर हस्बैंड ही इम्प्रिजन हो जाएगा या जेल चला जाएगा तो फिर आज की जो इंडियन मुसलमानों की कंडीशन है जहाँ ज़्यादातर मुस्लिम औरतें हस्बैंड पर डिपेंडेंट हैं तो उसकी पालन पोषण और बाकी चीज़ों का कौन जिम्मेदारी लेगा, इस पे इस विधेयक में कोई चर्चा नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात कि इस विधेयक के अंदर इस 3 साल की पनिशमेंट को कॉग्नाइजेबल रखा गया है। मतलब कोई भी आदमी, चाहे मेरा नेबर हो या मेरी वाइफ का रिलेटिव हो, कोई भी आदमी इस पे कंप्लेंट कर सकता है। ये सिर्फ वाइफ तक लिमिटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये मिसयूज़ भी किया जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मुस्लिम समाज के सुधार के लिए नहीं है, बल्कि ये एक मुस्लिम फैमिली में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ा सकता है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गैरकानूनी करार दिए जाने के बाद भी कम से कम 100 मामले ऐसे आए हैं जब लोगों ने कानून की परवाह किए बिना तलाक 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 कहकर अपने जीवन साथी से रास्ते अलग कर लिए। चर्चा को हम जारी रखेंगे लेकिन पहले श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। शीशे के उस पार बैठे हैं कार्यक्रम के तकनीकी संचालक दीपक जसरोटिया। कह रहे हैं कि श्रोता लगातार टेलीफोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो
जी सर,
कौन साहब बोल रहे हैं?
सर मैं जमाल मुस्तफा, सर मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से बोल रहा हूं। सर
जमाल साहब, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, रखिए अपनी बात।
जी सर, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि सर आपने हम लोगों की भी राय अपने इसमें रखने की कोशिश की।
मित्र इंडिया बोल कार्यक्रम में हमेशा आपकी ही राय को तवज्जो दी जाती है, ये आपका ही कार्यक्रम है, रखिए अपनी बात।
जी सर, सर मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले सर मैं कुछ बात आपको नोटिस करवाना चाह रहा हूँ। सर एक चीज जो मैंने नोटिस की है सर, आपके भी और जितने भी जो न्यूज चलते हैं, अगर ट्रिपल तलाक चलती है तो उसमें सबसे पहले जो कमेंट करता है उसके ट्रिपल तलाक के खिलाफ, तो सर वो गैर मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि मामला मुसलमानों का भी है, अहम मुसलमानों का भी मुद्दा है, लेकिन सबसे ज्यादा एक खिलाफ सिर्फ ट्रिपल तलाक पे गैर मुस्लिमों का क्यों होता है? दूसरी बात सर ये है, सर आपने जो कहा है ना कि सर ये जो ट्रिपल तलाक का मसला है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सियासत का मसला बन चुका है और इसमें सब लोग अपने अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में हैं। सर मैं एक बात और कहूंगा कि ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से चंद औरतों को न्यूज पर दिखा देते हैं। आप हमारे मुरादाबाद जिले में या इधर रत्नागिरी में देखिए, यहाँ पर बेशुमार औरतों ने यहाँ पर जुलूस निकाल कर ये कोशिश की है कि हमारे मुदाखलत मत कीजिए हमारे मजहब में, हम ट्रिपल तलाक के मुखालिफ हैं, ये इसके कानून के मुखालिफ हैं। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की ये बातें समझ में आ रही हैं तो इससे कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि मुसलमान इससे मुत्तफिक नहीं है।
रत्नागिरी से जमाल साहब आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई। जो राजनीति के पहलू की आप बात कर रहे हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले और कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं हम उनसे बात करेंगे। हेलो
हेलो सर, नमस्कार
जी। नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं?
जी मैं नवी रजा खान जमालपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ।
दरभंगा बिहार से जमाल खान साहब बहुत स्वागत, आप भी रखिए अपनी बात।
सर पहला आपने सही कहा कि राजनीति पूरा पत्रावाजी है और गवर्नमेंट की कोई इससे लेना देना नहीं है। अगर जितनी हमदर्दी है तो उन शिक्षा संस्थान में या जो भी माध्यमिक शिक्षण संस्थान में वहां पर देखे कि मुस्लिमों में बालिका शिक्षा की क्या स्थिति है, बहुत ही भयावह है। और मुस्लिमों में सबसे बड़ी कमी है, अगर इस तरह के इश्यू आ रहे हैं तो सबसे पहले लिटरेसी है, साक्षरता दर की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज जो है इसमें नकली मसाल बने वाले लोग जो है दीनी फरीजा से पूरी तरह से लोग हटे हुए हैं, उनको समाज में रिफॉर्म लाने के लिए दीनी शिक्षा का बुनियादी चीजें को समझना होगा। हमारे जो संविधान में जो मूलभूत अधिकार है चाहे महिला पुरुष उसको मिला थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा गया और सभी की राय लेकर कहा था क्या ट्रिपल तलाक कुरान में है नहीं।
खान साहब और भी श्रोता लाइन पर हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें संपर्क किया, आगे भी आप इंडिया बोल में अपनी बात रखिएगा। इस समय और कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं?
जी मेरा नाम शमी मुख्तर है सर।
शमी साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
हम बरहमपुर पूर्णिया बिहार से बोल रहे हैं।
पूर्णिया बिहार से बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आप कहें अपनी बात।
जी मेरा कहना ये है कि ये मसला जो है, ये प्रॉब्लम जो है मुसलमानों का है, वो मुसलमान लोग ही इसको समझ सकते हैं कि इसका असल इसका निवारण कैसे हो। तो कहने का मतलब ये है कि तीन तलाक है गलत, लेकिन इसको जो है डील करेगा मुसलमान ही। जी
जी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। और कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ गए हैं?
हाँ, तेजाराम बिश्नोई बोल रहा हूँ, गांव खारा तहसील सांचौर जिला जालौर राजस्थान से।
जालौर राजस्थान से रखें अपनी बात, बहुत स्वागत आपका भी।
सर जब तीन तलाक पे जब संसद ने कानून बना दिया है, लोकसभा जहाँ पे बीजेपी मेजोरिटी में है उसने कानून बना दिया है, वहाँ कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, और जब ये राज्यसभा में आया तो कांग्रेस इसके खिलाफ चली गई है। ये खुद कांग्रेस ने क्या अपने मुसलमानों की आधी आबादी बीजेपी को, कांग्रेस ने मुसलमानों की आधी आबादी महिला को अपने से दूर कर लिया।
नहीं, मैं एक तथ्य आपका दुरुस्त करना चाहता हूँ, विपक्ष का, कांग्रेस का, उसकी आपत्ति ये है, वो ये कह रही है सरकार से कि आप इसे राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, सलाह मशवरा होगा, वो इसमें बताएगी गुण दोष के आधार पर फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। ये असल विरोध का मुद्दा है सरकार के खिलाफ, विपक्ष का, खासतौर पे कांग्रेस का। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और श्रोताओं को भी शामिल करूंगा, उससे पहले कुछ महिलाओं की आवाज़ कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे जिससे हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाने में और विषय की बारीकियों को समझने में मदद मिलेगी।
एक दिन पहले रात में मारा था, सुबह जब मेरे दम में दर्द उर्द हो रहे थे, देर से उठी हूँ, घर में से बाहर कोई कदम रखा, नल के धोरे खड़ा होके 3-10 तलाक दे दी।
जो बिल पेश किया गया है वो औरतों के खिलाफ जा रहा है, जिसकी जिंदगी अजीरन बन जाती है, जो तलाक के जरिए से अलग हो सकती है, आप उस पर रोक लगाने जा रहे हैं। अगर पति और पत्नी के दरमियान नहीं निपटी है तो अलग होने का जो रास्ता है कुरान ने बहुत अच्छा प्रोसीजर बताया है, लेकिन अगर कोई मिसयूज करता है उसका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरफेयर करके चेंज करें, आप कानून लाएं, आप सजा दें, ये आपका इख्तियार नहीं है, ये मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम है।
शादान फरासत साहब कानून के जानकार हैं, आप श्रोताओं के साथ साथ आपने भी इन महिलाओं की आवाज़ सुनी, तीन आवाज़ें, पहली में दर्द तलाक का, दूसरी आवाज़ ये कहती है कि विधेयक औरतों के खिलाफ है, और तीसरी महिला का ये कहना है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी का अपना मामला है। आप देखिए कितना विरोधाभास है, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में ही एक मुद्दा तीन अलग अलग राय, इसे कैसे देखते हैं आप?
देखिए मुस्लिम कम्युनिटी भी किसी भी इस देश की कम्युनिटी के तरह मल्टीपल ओपिनियन होते हैं, ये कोई सिंगल ओपिनियन वाली कम्युनिटी नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि डिफरेंट व्यूज़ लिए जा रहे हैं, डिफरेंट औरतों के बीच में भी डिफरेंट व्यूज़ हैं। अब जहाँ तक इसमें एक ये पॉइंट है कि मुस्लिम औरतों के लिए ये अच्छा होगा या नहीं, मेरे हिसाब से इसमें मुस्लिम अगर उसका शौहर ही जेल चला जाएगा तो उसके बाद वो ये मैरिज सस्टेन करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे ख़त्म किया तो इसका मतलब ये है कि मैरिज कंटिन्यू करेगी, जो शादी है वो कंटिन्यू करेगी। अगर शादी कंटिन्यू करेगी फिर जेल भेजने का क्या मतलब है, ये पॉइंट इस विधेयक में सही से बताया नहीं गया।
ये पॉइंट मैं भी समझना चाहता हूँ, और मेरी तरह तमाम श्रोता हमारे BBC के जो हमें सुन रहे हैं इस समय वो भी समझना चाहते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो दलील दी थी संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान हम वो सुनेंगे और फिर आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था और उनके जवाब में जो गुलाम नबी आज़ाद ने राज्यसभा में कहा था उसके क्या मायने हैं। लेकिन उससे पहले हम श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ गए हैं? हेलो, हेलो, आपकी आवाज़ मित्र बहुत हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। अगले श्रोता के पास चलेंगे। कौन बोल रहे हैं?
नमस्कार सर
जी। नमस्ते
जी, मैं गांव दुड़ावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर से इस्माइल खान बात कर रहा हूं सर।
इस्माइल खान साहब, राजस्थान बाड़मेर से बहुत स्वागत कार्यक्रम में, रखिए अपनी बात।
जी थैंक यू। मैं तो यही कहना चाहूँगा इसमें कोई लंबा फायदा नहीं है सर।
अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको?
जी
ऐसा क्यों लगता है आपको कि इसमें फायदा नहीं है?
जिस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट जो बता रहे हैं वो उसी उनकी राय जो है वो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ।
अच्छा, बहुत शुक्रिया शादान फरसत साहब। क्या कड़ा कानून बनाने से, जैसा कि सरकार कह रही है कानून कड़ा होगा, कड़ा कानून बनाने से मदद मिलेगी क्या इससे मुसलमान महिलाओं की जो हालत जैसी है जैसा सरकार दावा करती है उससे बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है?
नहीं, मेरे हिसाब से ये मुसलमान महिलाओं और मर्दों दोनों के लिए बेहतरी नहीं और बल्कि चीज़ें बुरी हो सकती हैं। अगर इसमें सरकार बेहतरी चाहती तो इन्हें जब इसका भी प्रावधान डालना चाहिए कि अगर हस्बैंड जेल जाएगा तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो स्टेट देगी, लेकिन वो तो इन्होंने प्रोवाइड किया नहीं है। अब कोई हस्बैंड अगर जेल जाएगा, उसकी वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, हो सकता है फादर हों, ब्रदर हों, उन सब लोगों का कौन केयर लेगा?
ये मुझे लगता है सारा विवाद इसी एक लाइन, इसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द है, लेकिन इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं है इस पर हम चर्चा करेंगे। जिन श्रोताओं ने अभी हमें अभी ट्यून किया है उन्हें हम बताना चाहेंगे कि ये BBC हिंदी सेवा है और हर शनिवार की तरह आज भी आप सुन रहे हैं BBC इंडिया बोल, और BBC इंडिया बोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं तीन तलाक को अपराध घोषित करने से क्या मुस्लिम समाज में सुधार होगा या ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरा है। अब हम इसी दूसरे पहलू पर आ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक पैंतरा है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की वो दलील सुनिए जिसका जिक्र मैंने आपसे कुछ देर पहले किया था, जो दलील उन्होंने लोकसभा में दी थी।
अगर आपने तलाक 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 कह दिया, शादी खत्म हो गई, इरेवोकेबल, वो मिट नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत किया, फिर भी आप उसको अगर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका अंजाम क्या होगा? तब इसको अपराधी बनाया गया, तब इसको एक ऑफेंस बनाया गया। अब कहा जा रहा है कि वो जेल जाएगा तो कहां से सबसे सिलतेगा? अगर कोई अपराध कॉग्निजेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, तो उसका सिंपल मतलब होता है कि थाने से बेल नहीं मिलेगा। मजिस्ट्रेट के यहां तो बेल मिल सकता है, 125 CRPC में मजिस्ट्रेट को पावर है। गैर कानूनी डाइवोर्स को जो जबरदस्ती डाइवोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को फुटपाथ पर ला रहे हैं, उनको रोकने के लिए अपराध बनाया गया है और इसलिए उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा और माइनर की कस्टडी देनी पड़ेगी।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे आप, और अब इनके बाद कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद की बात को भी सुनना उतना ही जरूरी है क्योंकि वो कानून मंत्री से उलट बात कर रहे हैं।
ये बिल पूरी तरह से जस्टिस नहीं करता है मुस्लिम वुमेन के साथ। ये गवर्नमेंट भारत की जनता को और मुस्लिम महिलाओं को गुमराह कर रही है। अगर किसी का ट्रिपल तलाक हुआ है तो वो जो महिला है वो खाएगी कहाँ से, पिएगी कहाँ से, कंपनसेशन कौन देगा? सरकार देगी या पति देगा या सोसाइटी देगी? वो कानून इनको बनाना चाहिए था। ये जो BJP ने कानून बना गया है उस औरत के साथ नाइंसाफी है। एक ऐसा प्रोविजन रखा है उस कानून में क्रिमिनलिटी वाला कि पति 3 साल के लिए अंदर जाएगा जिसने तलाक दिया, और उसको बेल भी नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो पत्नी का खर्चा परिवार का ये पति को देना है, जब वो 3 साल जेल में रहेगा घर का खर्चा कौन चलाएगा? हमने कहा था सरकार चलाए, सरकार कहती हम नहीं दे देंगे, तो सरकार भी नहीं देगी। और पति पर कानूनन जिम्मेदारी है कि वो उसको खर्चा दे और पति जेल में, तो कितना कंट्रडिक्शन है इस कानून में, इस बिल में।
शादान फरासत साहब, आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की दलील सुनी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि जमानत नहीं मिलेगी, पति जेल में होगा तो गुजारा भत्ता कौन देगा? किसकी बात सही है, कानून मंत्री की या विपक्ष के नेता की?
देखिए, इस तर्क पे मेरे हिसाब से विपक्ष का तर्क सही है, इसलिए कि बेल जैसे बाइगमी का ऑफेंस होता है उसमें 7 साल की पनिशमेंट होती है तब भी वो बेलेबल ऑफेंस माना जाता है, मतलब आपको पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाएगी।
तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं या इसको इस तरह से देखा जाए कि कानून मंत्री ने जो दलील दी है लोकसभा में वो गलत दी है?
मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल की पनिशमेंट के लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस को बनाना नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं। आप IPC खोल के देख लीजिए, 5 साल 6 साल की पनिशमेंट में भी नॉर्मली ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं। तो यहाँ जब 3 साल की पनिशमेंट है तो उसको जानबूझ करके आपने नॉन बेलेबल क्यों बनाया है? बाइगेमी जहाँ दूसरी शादी का ऑफेंस होता है वहाँ 7 साल की पनिशमेंट होती है, तब भी ऑफेंस जो है वो बेलेबल है।
लेकिन कानून मंत्री कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट से जमानत आपको मिल जाएगी।
मजिस्ट्रेट से मिलेगी लेकिन इमीडिएटली तो नहीं मिलेगी, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीने बाद भी मिल सकती है। तो 4-5 महीने जब तक आप, यहां पे हमारे कंट्री में रूल ये है कि आप इनोसेंट हैं जब तक आपकी गिल्ट प्रूव नहीं हो। तो अगर आप इनोसेंट हैं तो 5 महीना फिर आप क्यों जेल में रहिएगा? तो ये सवाल तो उठता है ना। जबकि बेलेबल का मतलब होता है पुलिस स्टेशन से एज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब अपने हक के हिसाब से आप वो बॉन्ड भरिए और आपको बेल मिलनी है।
तो ये जो जमानत की अवधि, जमानत मिलने में जो देरी का आप आशंका जता रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता है आपकी नजर में?
बड़ी चिंता है बिल्कुल।
और इसी चिंता के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ गए हैं? हेलो हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, अगले श्रोता के पास चलेंगे। हेलो
हेलो सर
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
सर मैं बोल रहा हूँ अदीब अंसारी।
अंसारी साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप?
सर मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ।
सहारनपुर से बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, रखिए अपनी बात।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है, अगर जो हमारे कानून बनते हैं वो सोसाइटी में से बनते हैं, जब हमारी सोसाइटी में ऐसा प्रैक्टिस नहीं है तो वो कानून बने ही क्यों?
जी, और कौन श्रोता है इस समय हमारे साथ? हम सबकी बात को शामिल करेंगे। जी कौन बोल रहे हैं?
जी आतिफ खान।
खान साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
जी गाजीपुर से।
गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं आप?
जी सर।
रखिए अपनी बात।
जी सर, इसमें जो 3 तलाक का मामला है, अगर इसको इंसानी नजरिए से देखा जाए
जी,
तो तलाक का कोई मामला ही नहीं है। और रहा सवाल कि जिस कुरान का रेफरेंस देता है ये समाज, मुस्लिम समाज, उस कुरान के नजर से तलाक का कोई मसला ही नहीं है कि औरत के इंसानी हक को मार करके उसे बेघर कर दिया जाए। एक लंबे अरसे से इस्लामी उलमाओं के नाम पर इंसानों का एक दुश्मन जिसे इस्लामी आलिम कहा जाता है, इन्होंने एक ऐसा गंदा मामला माहौल क्रिएट किया और जिसको कुरान से जोड़ दिया गया। अगर कुरान की स्टडी का गहराई से उसको देखा जाए, उस पर किया जाए मामला, तलाक का कोई मसला ही नहीं बनता। ये अथॉरिटी नहीं है मर्द को कि औरत को उसके एक अमन सुकून की जिंदगी को तबाह कर दिया जाए।
अंसारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। और कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं इस समय?
हाँ जी, मैं वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
पश्चिम बंगाल मालदा से कौन साहब बोल रहे हैं, नाम तो बताइए अपना।
जमील अंसारी।
अंसारी साहब जी, रखें अपनी बात।
हाँ जी, हमारा सवाल ये है कि ये जो कानून बनाया है या ये जो मुद्दा उठाया है बीजेपी सरकार ने, ये सरासर मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है।
ऐसा आपको क्यों लगता है?
मुझे ऐसा लगता है कि जब तलाक का मामला है ये, तो तलाक का जो ठीक है आप सरकार ने उसको बंद कर दिया है, इसमें जेल का क्यों ये रखा है कि जेल 3 साल जेल होगा? अगर 3 साल जेल का ये संविधान ये कानून बनता है तो उसका परिवार को कौन कैसा देखभाल होगा? और दूसरा मतलब 3 साल में अगर वो जेल से निकल के आएगा तो उसका वो जो अपने बीबी को औरत को छोड़ देगा वो उसे एक्सेप्ट करेगा बाद में?
लगता है फोन कट गया। अंसारी साहब थे मालदा पश्चिम बंगाल से, अपनी बात पूरी कर नहीं पाए। और कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं? हेलो।
हेलो सर, नमस्कार।
जी नमस्ते, स्वागत आपका। कौन साहब बोल रहे हैं?
सर हम बोल रहे हैं मोहम्मद अफरोज।
मोहम्मद अफरोज साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
सर अररिया बिहार से बोल रहा हूँ।
रखिए अपनी बात।
हेलो।
जी जी कहिए कहिए।
जी सर अररिया बिहार से बोल रहा हूँ।
जी कहिए।
मेरा ये कहना है सर, अगर कोई हिंदू कास्ट में अगर शादी होता है, अगर उसका हस्बैंड मर जाता है, तो उसको उस लड़की उस औरत को पूरा जिंदगी के लिए उसको बगैर शादी से ही रहा जाता है। अगर आज मुस्लिम राज में, मुस्लिम कंट्री में, अगर मुस्लिम परिवार को अगर कोई उसको 3 तलाक देता है, अगर उसको सरकार कानून बना दिया गया, उसको अगर
मैं आपकी बात कानून के जानकार शादान फरासत साहब हमारे सामने बैठे, उनके पास पहुंचा रहा हूं।
देखिए, जहां तक हिंदू कम्युनिटी के सवाल है, वहां अगर आज की डेट में कोई डिवोर्स होता है या हस्बैंड मर जाता है, तो वाइफ रीमैरी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो फिर से दूसरी बार शादी नहीं कर सकती हैं। ये बात कानूनी तर्क से सही नहीं है।
चलिए साहब, कानून के तर्कों पर ही हम चलेंगे। और इस समय कौन श्रोता और हमसे जुड़ रहे हैं? हेलो।
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
सर, मैं अदीब अंसारी बोल रहा हूँ।
अंसारी साहब, रखिए अपनी बात।
यस सर, मेरा यही अभी क्वेश्चन था सर। जो हमारे एक्ट बनते हैं, जो हमारे कानून बनते हैं, वो हमारी सोसाइटी में से बनते हैं ना। जो ऐसे कि ट्रिपल तलाक हमारी सोसाइटी में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो इसका हमारे कानून क्यों सही है?
एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा शादान साहब, कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बता दिया कि साहब ये गैर कानूनी है, तो हम मान क्यों नहीं लेते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट की बात तो हमें मानना चाहिए ना।
नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बात सब लोग मान रहे हैं। और आज अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी वाइफ को 3 बार तलाक बोले, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस, लीगली उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
लेकिन उस महिला पर तो गाज गिर गई उस समय जब उसको आपने 3 तलाक बोल दिया।
नहीं, तो अगर आपने बोला और उसने सुना, लेकिन आज अब ये नॉलेज सबको है कि उसका कोई, उस महिला को भी पता है कि उसका कोई मीनिंग नहीं, वो पलटवार अपने,
पुलिस के पास ऐसा कोई कुछ है नहीं जिसकी वजह से वो शिकायत दर्ज करके उस पुरुष पे कार्रवाई कर सके।
नहीं, उस 3 शब्दों को कहने के लिए किसी भी देश में, स्पेशली हमारे जैसा देश जो संविधान से कंट्रोल्ड है, वहाँ पे 3 शब्दों को कहने के लिए, चाहे मैं अपनी वाइफ को हेलो 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 कहूँ या तलाक तलाक कहूँ, 3 साल की जेल नहीं होनी चाहिए। ये एक संविधानिक डेमोक्रेसी के लिए सही लॉ नहीं है।
मुझे लगता है कि ये सारी बहस, सारा मुद्दा इसी 3 साल की सजा और इसके प्रावधान पर आकर टिक गया है। जल्दी से एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। दीपक जसरोटिया शीशे के उस पार बैठे हैं, कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं। कौन श्रोता हम तक पहुंचा रहे हैं इस समय आप?
हाँ, नमस्कार, सीताराम राय, जिला गाजीपुर।
सीताराम जी नमस्ते, आपका टेलीफोन ना लगे ऐसा होता ही नहीं है, बहुत स्वागत है हमेशा की तरह।
बिल्कुल, हम ये रखना चाहते हैं कि जैसे विधवा विवाह है या सती प्रथा है, उसको खत्म किया गया, ये सरकार का दायित्व बनता है। वो हिंदू और मुस्लिम की कमी कोई बात नहीं है, आखिर उन लोगों को उससे कष्ट होता है, उनका जीवन जो है। और जेल जाने की बात है तो उसमें दोनों को ही संभालना पड़ता है, इसीलिए ये कानून बनाया गया और ठीक बनाया गया है।
बहुत शुक्रिया सीताराम जी, गाजीपुर से। एक श्रोता को और कार्यक्रम में शामिल करेंगे हम जल्दी से। हेलो।
हेलो जी, नमस्कार सर।
जी नमस्ते, रखें अपनी बात।
जी, जो ये 3 तलाक का है, ये बीजेपी लोगों को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, मुसलमानों के ऊपर तो ये 3 तलाक का मामला आ रहा है।
भाई, हमें आपकी आवाज़ ठीक सुनाई नहीं दे रही है, बहुत माफ़ी चाहते हैं, आपका फ़ोन हमें काटना पड़ रहा है। जितना मैंने इस चर्चा को करने के पहले थोड़ा पढ़ाई की, कुछ पन्ने पलटे, वो मुझे बात समझ में आई कि विधेयक को यदि सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देते तो शायद इतना विवाद नहीं होता, क्योंकि विपक्ष बार बार इसी बात पर जोर दे रहा है। बहरहाल, इस विधेयक को कानून बनाने के लिए सरकार के पास अभी भी एक विकल्प बचा हुआ है, और वो विकल्प अध्यादेश लाने का है। चलते चलते बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने से कुछ प्रतिक्रियाएँ मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। रजनीश शर्मा लिखते हैं, 3 साल की सज़ा के डर से ऐसे मामलों में कमी आएगी, अभी किसी बात का डर नहीं है, इसलिए सब मनमर्जी करते हैं। हिमांशु सरोहा, बीबीसी के श्रोता पाठक, वो लिखते हैं कि क्या फांसी की सजा से हत्याएं होना बंद हो गई हैं? तर्क है इनका। नीरज अग्निहोत्री लिखते हैं कि अगर किसी को ये राजनीतिक पैंतरेबाजी लगती है, तो फिर शाहबानो केस पर राजीव गांधी द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बेशर्मी के साथ पलटना, वो क्या था? तो इन्हीं टिप्पणियों के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। इंडिया बोल में आज इतना ही। शादान फरासत, आप स्टूडियो आए, चर्चा को सार्थक बनाने में मदद की, शुक्रिया आपका। और शुक्रिया देश दुनिया में सुन रहे हमारे तमाम श्रोताओं का। और माफ़ी हमेशा की तरह उनसे मांगना चाहेंगे जो कार्यक्रम में शामिल हो ना सके, अगले शनिवार फिर एक ज्वलंत विषय के साथ बीबीसी इंडिया बोल में हाजिर होंगे। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार, वक्त आप जानते हैं, फिर भी बताऊंगा मैं आपको, सुबह 6:30 बजे। संदीप सोनी के साथ अब पूरी टीम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।